दिन भर तारीख 20 अक्टूबर दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा, प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत, मौतों के लिहाज से दुनिया में पांचवा स्थान, कैसे बदलेंगे हालात।
हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। आप लैंसेट के रिपोर्ट को देखिए, 90 लाख लोग 2015 में प्रदूषण से मरे, उसमें से 25 लाख हमारे देश में थे।
केदारनाथ दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने की कई परियोजनाओं की शुरुआत, कांग्रेस ने उठाए सवाल, और विवेचना में होगी साल 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में भारत को मिली हार की वजहों की पड़ताल।
पंडित नेहरू द बिगेस्ट वन टू ब्लेम, उनका आइडियल था हिंदी चीनी भाई भाई, उनका एडवाइजर था कृष्ण मेनन डिफेंस मिनिस्टर।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार 2015 में दुनिया भर में हुई 90 लाख समय पूर्व मौतों का संबंध प्रदूषण से था। इसमें वायु प्रदूषण सबसे पहला और जल प्रदूषण दूसरा बड़ा कारण था। लगभग यही ये सभी समय पूर्व मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुई थी। पुलिस ने बताया है कि गुरुवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर शहर में एक अज्ञात हमलावर ने ग्रेनेड फेंका, जिसमें 26 मजदूर घायल हो गए। 24 घंटे में इस प्रांत में यह हिंसा की तीसरी घटना है। इस हमले की किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध अलगाववादी विद्रोहियों के हमले में 2014 से अब तक 50 मजदूर मारे गए हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन का सम्मेलन समाप्त हो गया है और इसके सदस्य देशों ने यूरोपियन यूनियन से बाहर ब्रिटेन के साथ भविष्य में व्यापार के मुद्दे पर बात करने के लिए सहमति जताई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि ब्रिटेन के वित्तीय निपटान के लिए आधा काम भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। वहीं जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि उन्हें आशा है कि दिसंबर में व्यापार पर बातचीत होगी। हमें आशा है कि दिसंबर तक हम दूसरे चरण की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि ब्रिटेन हमारे लिए कितना प्रगति करता है और वह पहले चरण के मुख्य बिंदुओं पर कितना सहमत है। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण अफ्रीका फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डैनी जॉर्डन पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली दक्षिण अफ्रीका की पूर्व सांसद और गायक जेनिफर फर्गुसन ने बीबीसी से कहा है कि वह उनके खिलाफ मामला नहीं चलाना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है। फर्गुसन का आरोप है कि तकरीबन 25 साल पहले उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय ने कहा है कि कैटालोनिया की स्वायत्त ताकत समाप्त करने के फैसले का समर्थन स्पेन की विपक्षी पार्टियों ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि अलगाववादियों द्वारा आज़ादी के लिए किए गए अवैध जनमत संग्रह के बाद उनका लक्ष्य कानून लागू करने का है। रखॉय ने कैटालोनिया के प्रधानमंत्री कार्लस पुज्जेमोंट पर क्षेत्रीय संसद के विपक्ष की आवाज़ दबाने का भी आरोप लगाया। समाजवादी नेता कार्मेन काल्वो ने कहा है कि कैटालोनिया में जनवरी में दोबारा चुनाव कराने का प्रस्ताव है। वाकई मैं सोशलिस्ट पार्टी के साथ सहमत हूं, क्योंकि हम एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। हम कल ये पेश करने जा रहे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, सिटीजन्स पार्टी और सरकार शामिल है। इसका पूरा मकसद एक क्षेत्र में कानून स्थापित करना है, क्योंकि देश के एक हिस्से में ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ कानून ना हो। ये थे स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय के शब्द। इराकी सेना ने कहा है कि उत्तरी प्रांत के किरकुक शहर के आखिरी ज़िले से भी उसने कब्जा अपने हाथ में ले लिया है। अल्तुनकुपरी नामक शहर पर कब्जे के लिए कुर्दिश और इराकी सेनाओं के बीच काफ़ी लड़ाई हुई है। कुर्दिस्तान में आज़ादी के लिए जनमत संग्रह के बाद इराक की केंद्र सरकार प्रशासनिक कब्जे की कोशिशें कर रही है। केनिया चुनाव आयोग के विवादित मुख्य कार्यकारी अधिकारी एजरा चिलोबा छुट्टियों पर चले गए हैं और वह अगले हफ्ते दोबारा होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान काम नहीं करेंगे। विपक्षी नेता राइला ओडिंगा ने कहा है कि वह चुनाव में भाग नहीं लेंगे और चिलोबा को बर्खास्त किया जाए। अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने सीरियाई शहर रक्का को तथाकथित इस्लामिक स्टेट से मुक्त कराने के बाद औपचारिक रूप से जश्न मनाया है। महीनों की लड़ाई के बाद डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने आईएस को खदेड़ा था। हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन पर एक और अभिनेत्री ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ऑस्कर पुरस्कार विजेता लुपिता लियोंगो ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में लेख के जरिए वाइनस्टीन पर ये आरोप लगाए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो कितनी सुरक्षित है, सवाल सामने है और इसकी वजह है लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2015 में दुनिया भर में प्रदूषण की वजह से 90 लाख लोगों की मौत हुई थी और उनमें से 2/3 मौतें वायु प्रदूषण की वजह से हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों की संख्या के लिहाज से भारत का 5वां नंबर है। सिर्फ बांग्लादेश, सोमालिया, चाड और नाइजर ही भारत से आगे हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषण की वजह से दिल की बीमारी, स्ट्रोक और फेफड़े के कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं जो लोगों की मौत की वजह बनती हैं। लैंसेट कमीशन ऑन पॉल्यूशन एंड हेल्थ के को चेयरपर्सन रिचर्ड फुलर क्या कहते हैं वो आपको सुनाते हैं।
Pollution kills people by making them sick. Different kinds of pollution have different kinds of health impacts.
प्रदूषण लोगों को बीमार बनाता है और इससे उनकी मौतें होती हैं। अलग अलग तरह के प्रदूषण का स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण का प्रभाव धूम्रपान करने जैसा होता है। इससे फेफड़े का कैंसर हो सकता है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं या फिर सीने में संक्रमण हो सकता है। रासायनिक प्रदूषण से तंत्रिका संबंधी समस्याएं या फिर मौत भी हो सकती है। ये थे रिचर्ड फुलर। लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट को लेकर मैंने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के डिप्टी डायरेक्टर चंद्रभूषण से बात की और सबसे पहले पूछा कि क्या ये रिपोर्ट भारत के लिए खतरे की घंटी की तरह है।
बहुत अलार्मिंग रिपोर्ट है। ये बताता है कि प्रदूषण से हिंदुस्तान में सबसे अधिक लोगों की मौत हो रही है, तो बहुत ही अलार्मिंग है और हमारे लिए एक्शन लेना जरूरी है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। पिछले कुछ सालों से जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं, आप WHO का रिपोर्ट देख लीजिए या एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का रिपोर्ट आता है हर एक 2 साल पे, और अगर उस रिपोर्ट को देखेंगे तो एक तरह से एक्सपेक्टेड टर्म्स में लैंसेट की रिपोर्ट बता रही है कि 25 लाख लोग देश में वायु प्रदूषण और पानी के प्रदूषण से मरते हैं। ये रिपोर्ट तो ये बताता है कि हमारे देश में 5-6% GDP हम लूज कर रहे हैं प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और 2-3 और डिजीज से ज्यादा लोग प्रदूषण से मरते हैं। ये बताता है कि दुनिया में जितने वॉर हो रहे हैं उससे अधिक और टेररिज्म से अधिक लोग प्रदूषण से मर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन में प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको हम अब नकार नहीं सकते हैं क्योंकि अब हमें ये हमारे लोगों की जान ले रहा है। अभी
मैं ये जानना चाहूंगा कि इसके लिए क्या कुछ इमीडिएट होना चाहिए सरकार के स्तर से भी और लोग अवेयर हों, क्योंकि लोग जानते हैं प्रदूषण एक ऐसी चीज अब नहीं है कि लोग उससे वाकिफ ना हो।
देखिए, वाकिफ एक है कि जानकारी और दूसरा समझना। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में लोगों को थोड़ा जानकारी हो गई है कि प्रदूषण से उनके सेहत पे कुछ असर पड़ेगा, लेकिन उस चीज को समझना और उसको इंटरनलाइज करना मेरे अंदाज से अब तक लोगों में नहीं आया। ये कहना कि हम प्रदूषित गाड़ियां चलाएंगे या ये कहना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट ना करें, ये कि प्रदूषण के अगर मानक और स्टैंडर्ड हम बढ़ाते हैं तो उसके अगेंस्ट आप कैंपेन कीजिए, ये बताता है कि अवेयरनेस है लेकिन वो जो समझ है जिससे कि पूरे समाज में समझ आए और उस चीज को लेके इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़े, वो समझ नहीं है हमारे समाज में अभी।
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर पटाखे बेचने पर पाबंदी लगाई, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं इस दिवाली के बाद कि पिछली बार से हवा का स्तर प्रदूषित था लेकिन पिछले साल के मुकाबले हवा का स्तर बेहतर था, तो क्या आप कहीं सख्ती की जरूरत भी देखते हैं?
जरूर। देखिए, एक समय ऐसा आता है जबकि समाज को झझोलने की जरूरत होती, कन्विंस करते रहें लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करें, लेकिन अगर लोग समझे नहीं उस चीज को और साथ चलने से मना करें तो झझोलने की जरूरत है। वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो झझोली है हमारे समाज को और ऐसे कुछ और हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि अंत में आप लैंसेट के रिपोर्ट को देखिए, मतलब कि 90 लाख लोग 2015 में प्रदूषण से मरे, उसमें से 25 लाख हमारे देश में थे। प्रपोर्शन बहुत अधिक है, चाइना जिसकी जनसंख्या हमसे अधिक है वहां पे भी प्रदूषण से कम लोग मरते हैं। मेरे अंदाज से ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है कुछ और एरिया में, जैसे कि व्हीकुलर पोल्यूशन हो गया, गाड़ियों से जो प्रदूषण है वो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात, जो फैक्ट्रियों से और थर्मल पावर प्लांट से जो प्रदूषण निकलता है उसमें कड़ाई करने की जरूरत है, ये सब चीज करने की जरूरत है।
ये थे चंद्रभूषण। प्रदूषण पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि भारत में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण के बढ़े स्तर पर चिंता जाहिर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बाद भी हवा में प्रदूषण का स्तर तय मानक से कई गुना ऊपर था। इसे लेकर लोगों का क्या कहना है, हमारी सहयोगी पायल भुयन ने ये जानने की कोशिश की।
पिछले साल के मुताबिक इस बार कम था, लोगों ने खुशियां मनाने की कोशिश की। जिसके पास कुछ पटाखे थे इधर उधर से ला के अपने जलाए हैं। 11 बजे के बाद जो पटाखे चले हैं उसमें बहुत ज़्यादा शोर और आवाज़ थी, उसी कारण आज जो आप इसका मौसम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धुंध भी है और पोल्यूटेड भी है। सुबह सुबह सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और आने वाले 2-3 दिन और हम लोगों को परेशानी रहेगी।
इस साल तो पिछले साल से बहुत कम लगा और हम लोग बहुत कम मात्रा में पटाखा इस्तेमाल किए, अधिकतर बच्चे सबको नहीं दिए करने के लिए।
मैं दिल्ली में 35 साल से हूँ और अब की बार जो न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये केवल दिल्ली के लिए, यार मेरे हिसाब से इसको पूरे एनसीआर में एप्लीकेबल होना चाहिए था।
रोड पे चलने के बाद प्रदूषण जो है उसे हम लोग का सर दर्द करने लगता है, शाम के समय जब हमें खांसी जब आती है तो काला सा खांसी में मतलब कि मवाद जैसे आने लगती है, सर भी दर्द करने लगता है शाम के समय और उसके चलते काफी परेशानी होती है।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अगली खबर उत्तराखंड से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ में थे, उन्होंने यहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की आलोचना भी की, वहीं कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री के दावों पर सवाल उठाने में देर नहीं की। एक रिपोर्ट के साथ देहरादून से शिव जोशी।
कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड स्थित हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ पहुंचे। उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान काला चश्मा पहने मोदी ने वहां उपस्थित दर्शनार्थियों और स्थानीय लोगों के एक छोटे से समूह को संबोधित भी किया। अपने भाषण में मोदी 3 साल पुरानी सरकार के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री के रूप में दिखने के बजाय धुआंधार चुनाव प्रचार करने वाले 2014 के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तरह नजर आए। उन्होंने बताया कि कैसे 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में गुजरातियों की मदद के लिए विमान लेकर वो आनन फानन पहुंचे थे, लेकिन उन्हें धाम जाने से रोक दिया गया था।
अचानक टीवी पर खबर आ गई कि मोदी अब केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी ले रहा है, तो पता नहीं दिल्ली में तूफान मच गया। जब दिल्ली में बैठे हुए लोगों को परेशानी होती है तो मैं क्यों किसी को परेशान करूं, मैं हट गया। लेकिन शायद बाबा ने ही तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से ही होना था।
उस समय राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा थे जो अब बीजेपी के नेता हैं। मोदी के दावे का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जवाब देने में देर नहीं की। देहरादून में मीडिया से बातचीत में रावत ने कहा कि मोदी को भला कांग्रेस क्यों रोकती, उन्हें तो रोका तब के मुख्यमंत्री ने था, जो अब उनके बगलगीर हैं वे उनसे ही पूछ लें। केदारनाथ के पुनर्निर्माण के दावे और शुक्रवार को विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास पर तंज कसते हुए हरीश रावत ने कहा कि ये सब तो बासी हो चुका।
ये तो सब बासी चीजें परोसी जा रही हैं। मैं शिलान्यास कर चुका हूँ उन चीजों का, मैं उद्घाटन कर चुका जो प्रोटेक्शन वाल इत्यादि है, तो आप घाटों का कर चुका, घाट बने हुए हैं, तो ये क्या वहाँ किस चीज की शुरुआत कर रहे हैं मैं नहीं जानता।
प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ संबोधन से ऐसा लग रहा था कि वो चुनावी सभा कर रहे हों और उनके जुमले उनकी तो मानो बौछार ही रही। बाबा ने बुलाया है, बाबा का बेटा ही बाबा का काम करेगा, देश में 125 करोड़ और बाबा हैं, उनका काम करता है, आदि आदि। और आखिर में विद्रूप बन चुकी वही करुण पहाड़ी विडम्बना जो अब नेताओं की लच्छेदारी के काम आती है। पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को यहां से नहीं जाने देंगे। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
आगे बढ़ते हैं। केरल हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि धर्म के बाहर की गई हर शादी को लव जिहाद के मामले की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को धर्मांतरण केंद्रों को बंद कराने का आदेश भी दिया है। एक रिपोर्ट के साथ इमरान कुरैशी।
पिछले साल से लव जिहाद के मामले लगातार चर्चा में हैं, खासकर केरला के हाई कोर्ट में। पिछले साल दो खंड न्यायपीठ ने एक ही मामले में दो अलग निर्देश दिए थे। एक ने तो एक शादी को रद्द भी कर दिया था और अब खंड न्यायपीठ ये निर्णय दिया है कि हर अंतर धार्मिक शादी को उस नजरे से नहीं देखना चाहिए कि वो लव जिहाद का मामला है। इस न्यायपीठ का निर्णय श्रुति और अनीस हमीद के मामले में आया है। श्रुति और अनीस के बीच कॉलेज में प्यार हो गया, पर श्रुति के माता पिता ने शादी को मान्यता नहीं दी क्योंकि अनीस मुसलमान था। फिर उन्होंने पुलिस में श्रुति के लापता होने की शिकायत दर्ज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को सोनीपत हरियाणा में तलाशा और वहां से वापस केरला ले आई। श्रुति को एक योगा केंद्र में शामिल किया गया ताकि वो हिंदू धर्म के उसूलों पर चले, जबकि वो इस्लाम को कन्वर्ट ही नहीं हुई थी। अनीस हमीद के वकील आर सुरेंद्रन ने बीबीसी को बताया।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट सी Sudhi was not in the court at the time when it was filed. It is filed as a writ petition for habeas corpus. Sudhi was under confinement.
जब अनीस ने हेबियस कॉर्पस याचिका दर्ज की तो हमें नहीं पता था कि वो कहाँ है, लेकिन उन्होंने कोर्ट को बताया कि योगा केंद्र में किस तरह मारा पीटा और जब कभी वो अनीस से मिलने की बात करती थी तो उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसको चुप कराया जाता था। कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया है कि ये सिर्फ प्यार का मामला था जिसमें जिहाद नहीं था। ये थे आर सुरेंद्रन के शब्द। हाईकोर्ट के पूछताछ में श्रुति ने यह भी कहा कि जब वो एकल न्यायाधीश के सामने माता पिता के साथ जाने के लिए मंजूर हो गई क्योंकि उस पर बहुत दबाव था। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी उस पर दबाव डाला था, लेकिन राज्य के पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुमन चक्रवर्ती इस निर्णय के बारे में कहते हैं।
No, the boy has in fact filed the petition stating that his wife has been illegally detained at a yoga center run by some other activity, some other political party.
देखिए, इस खंड न्यायपीठ का निर्णय समय की मांग है। कई तरह के लोग हर अंतर धार्मिक शादियों के विषय को सनसनी तरीके से देखते हैं। ये थे सुमन चक्रवर्ती के शब्द। तो इस निर्णय से क्या प्रवृत्ति बन सकती है? हमने यह सवाल चेन्नई के वकील गीता रामशेषन से पूछा। उन्होंने कहा,
It reinforces the statutory law that permits a person above 18 years to do what they want, to exercise their right of choice.
ये निर्णय वैधानिक कानून का सुधारक बनाता है जिसमें कोई भी पुरुष या महिला जो 18 साल की उम्र से ज्यादा हो उसको पसंद का अधिकार देती है। ये एक बहुत ही मूल्यवान निर्णय है जो कानून के राज के मुताबिक काम करने की बात करता है। ये थे गीता रामशेषन के शब्द। इस खंड न्यायपीठ ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उत्तर प्रदेश वर्सेस लता सिंह के मामले में जो कहा था उसको फिर से दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाति व्यवस्था देश को जोड़ती नहीं बल्कि तोड़ती है। खंड न्यायपीठ का मतलब था कि अंतर धार्मिक शादियां देश के हित में है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
बीबीसी इंडिया बोल।
अयोध्या पर क्यों खास ध्यान दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार? दिवाली के मौके पर दीपदान का भव्य कार्यक्रम और इससे पहले राम की 100 मीटर ऊंची मूर्ति लगाने का ऐलान। सरकार का दावा, पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद, लेकिन विरोधी इसमें देख रहे हैं राजनीति। आप क्या सोचते हैं? रखिए अपनी राय बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 21 अक्टूबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
55 साल पहले आज ही के दिन यानी 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध में भारत की बुरी तरह से हार हुई थी। भारत की सैन्य विफलता ने देश के मनोबल को झकझोर कर रख दिया था और भारतीय राजनीति से जवाहरलाल नेहरू के वर्चस्व की समाप्ति की शुरुआत भी हो गई थी। इस युद्ध में भारत की विफलता के क्या कारण थे और इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए, बता रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
आज कल की खबरें आई थी, वहाँ पूर्वी सीमा प्रांत में वालोंग एक जगह है, उसको हमारी फौज को छोड़ना पड़ा। सीला एक पास है, پہاڑ ہے بونڈیلا کے اوپر, تاوانگ اور بونڈیلا کے بیچ میں, اور بونڈیلا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. رنج ہوا اس کو سن کر, رنج ہوا کہ ہماری فوج کو ہٹنا پڑا وہاں سے, لیکن رنج ہونے سے اور بھی ہمارا ارادہ پکا ہوا.
بھارت کے پردھان منتری جواہر لال نہرو نے یہ بھاشن 20 نومبر 1962 کو دیا تھا. تب تک نیفا کے ادھکتر مورچے پر بھارت کی ہار ہو چکی تھی اور چینی سینک تیزپور کے نزدیک تک پہنچ آئے تھے. وہاں کے اپایوکت وہاں سے بھاگ چکے تھے اور یہ ڈر تھا کہ تیزپور پر قبضے کے بعد چینی اسم کے میدانی علاقوں میں اتر آئیں گے. شکر یہ رہا کہ اس بھاشن کے کچھ گھنٹوں کے بھیتر ہی چین نے ایک طرفہ یدھ ویرام کی گھوشنا کر دی اور واپس اپنے کھیتر میں چلے گئے. لگ بھگ ایک مہینے تک چلے اس یدھ میں بھارت کے 1383 سینک مارے گئے, 1047 گھائل ہوئے اور 1696 سینک لاپتا ہوئے اور 3968 سینکوں کو چین نے یدھ بندی بنایا. چین نے اس یدھ میں 722 سینک کھوئے اور ان کے 1697 سینک گھائل ہوئے. یدھ کی نیو ایک طرح سے 1950 میں ہی رکھ دی گئی تھی جب چین نے تبت پر نینترن کیا تھا. چین نے کبھی بھی میکموہن لائن کو دونوں دیشوں کے بیچ سیما کے طور پر سویکار نہیں کیا. دونوں دیشوں کے سمبندھوں کو اس سمے بہت بڑا دھکا لگا جب 1959 میں تبت کے دلائی لاما بھاگ کر بھارت آئے اور بھارت نے انہیں راجنیتک شرن دے دی. میں نے جانے مانے راجنیتک وشلیشک اندر ملہوترا سے پوچھا کہ اگر بھارت نے دلائی لاما کو اپنے یہاں شرن نہیں دی ہوتی تو کیا بھارت چین یدھ نہیں ہوا ہوتا؟
دلائی لاما اگر وہاں سے آ رہے ہیں تو ان کو نہیں منع کیا جا سکتا. یہ دیش جو ہے یہ گوتم بدھا کا دیش ہے, اس کو ہم نے نکال دیا ہو یہاں سے وہ دوسری بات ہے. تو دلائی لاما کا آنا جانا لازمی تھا. نہرو کو معلوم تھا کہ یہ ان کو بہت پریشان کرے گا, لیکن نہرو کو جو یہ نہیں معلوم تھا وہ یہ کہ ماؤ سے تم نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ہندوستان کو اور جواہر لال نہرو کو ایک سبق سکھانا ہے.
اس یدھ میں مقابلہ دو اسمان سیناؤں میں تھا. بھارت کی اور سے 10,000 سے 12,000 سینک لڑ رہے تھے تو چین نے ان کے مقابلے 80,000 سینک اتارے ہوئے تھے. چینی اونچائی پر تھے اور پہاڑ پر لڑنے کا ان کا انوبھو بھارت سے کہیں بہتر تھا. اس یدھ میں بھاگ لینے والے بریگیڈیئر لکشمن سنگھ کہتے ہیں,
پہلے تو پوزیشن غلط تھی, دوسرے ہمارے پاس کوئی پراپر ہتھیار نہیں تھے, مطلب کہ آرٹلی سپورٹ نہیں تھا, دو گن تھی جو کہ آؤٹ آف رینج تھی, ان کے پاس 80 بم تھے, تو ہمارے پاس جو تھے سنو کلودنگ نہیں تھا, ہمارے پاس مائنس نہیں تھی, ہمارے پاس ڈگنگ اکوپمنٹ نہیں تھا, مطلب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا سوائے رائفل اور 50 راؤنڈ. اور ہماری جو پوزیشن تھی وہ ویلی میں تھی, چائنیز جو تھے اوپر تھے, دے ہیڈ اے روڈ رائٹ اپ ٹو دس رج آن وچ دے ور ڈپلائڈ and our everything was man porter, it was coming on the kamar pe porter leke aate the. Do din ka rasta tha jahan hamara saman pada tha, to to khana jo hum bulate the khud hi kha lete the wo log.
Nifa mein tainat 7th brigade ko uske hal par hi chhod diya gaya tha. Chini na sirf behtar sainik taiyari ke sath aaye the balki sankhya mein bhi bhartiyon par kahin bhari the. سیکنڈ لیفٹیننٹ امرجیت سنگھ بہل کو انہوں نے کڑی لڑائی کے بعد بندی بنایا تھا. ہتھیار ڈالنے کے بعد چینیوں نے ان کے ساتھ بہت برا ویوہار کیا.
دیکھیے خاص تو انہوں نے ہماری طرف ہونا ہی تھا کیونکہ ہم نے اوپر ان کے اوپر ڈائریکٹ آرٹلری فائر کیا تھا, اور اس وقت جو اینڈ میں جب ہم لوگوں کا انہوں نے سرنڈر کروایا اس وقت تو بہت ہی فیئرس بیٹل ہو رہا تھا, ہم بھی فائر کر رہے تھے, وہ بھی فائر کر رہے تھے, چلا بھی رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر, اور جب انہوں نے بٹ مار کے میرے سے پسٹل چھین لیا اور میرے جوانوں کو بھی اوور رن کر دیا, اوپر آ کے چڑھ گئے, تو اس وقت تو سچویشن یہی ہوتی ہے کہ پراؤڈ پیراٹروپر بیکمز اے پرزنر آف وار اینڈ فیلز لائک نو بڈی آن ارتھ.
اس ہار کے پیچھے کون لوگ ذمہ دار تھے, شیرش راجنیتک نیتتو, شیرش سینک نیتتو, یا پھر یدھ کے مورچے پر لڑنے والے کمانڈر یا سینک؟ راجنیتک وشلیشک اندر ملہوترا اس ہار کا ٹھیکرا جواہر لال نہرو کے سر پر پھوڑتے ہیں.
His, no matter who advises him what parliament says to Krishna Menon, he was there till well after the 20th of October. On 31st October, he was made only Minister of Defense Production with 11 din. वो थे वहाँ और जब तक वो थे तो उनकी और कॉल को कोई कुछ कह नहीं सकता था. कॉल थे अब बी एन मलिक, बिकॉज हर फैसले में मलिक का हाथ है. और किसी दुनिया में देश में इंटेलिजेंस चीफ का रोल है टू प्रोवाइड द इंटेलिजेंस बट नॉट टू मेक पॉलिसी. लेकिन ये एम जे देसाई जो एम्बेसडर गालब्रिथ से भी बात कर रहे थे और पंडित जी के एडवाइजर थे, वो डिफेंस सेक्रेटरी एंडो से हरीश सरीन है डेब्री से. थापर्स रोल वॉज नॉट वन ऑफ कमीशन बट ऑफ ओमिशन. पलित उनको कहते रहे कि भाई भगवान के वास्ते तुम इसको ओवर रूल करो, तो बट एटलीस्ट ए मैन ऑफ ऑनर ही रिजाइंड.
युद्ध में भाग लेने वाले जनरल के तिवारी भी इसके लिए नेताओं और सेना के आला अफसरों को जिम्मेदार मानते हैं. मैंने उनसे पूछा कि आपकी नजर में इस हार का विलेन किसे ठहराया जाना चाहिए.
हिंदुस्तानी एटीट्यूड नेतों की, नेताज की, पंडित नेहरू द बिगेस्ट वन टू ब्लेम. उनका आइडियल था हिंदी चीनी भाई भाई, उनका एडवाइजर था कृष्णा मेनन डिफेंस मिनिस्टर, और एक दो इंडियन ऑफिसर्स को उन्होंने काबू किया हुआ था. जनरल थापर था आर्मी चीफ और जनरल कौ था चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ. उनको इनक्रेज कर रहे थे और हमें हुक्म था चाइनीज वोंट अटैक, जाओ टेक ओवर बर्थ राइट, अपने ऑक्यूपाई कर लो अपना. दे आर नॉट इवन फुली आर्म, दे हैव ओल्ड वेपन्स एंड सो ऑन, ओनली वन इन थ्री पीपल इज आर्म्ड थिंग लाइक. ये ऐसी रिपोर्ट हमारे पास आती थी जब हम उधर थे 61-62 में.
इस हार से नेहरू कभी उबर नहीं पाए. प्रधानमंत्री पद पर वो बने जरूर रहे लेकिन चीन का विश्वासघात उन्हें अंत तक सालता रहा और मई 1964 में उनका देहावसान हो गया. इंदर मल्होत्रा कहते हैं,
कोई लीडर किसी भी देश में जितनी बेइज्जती हुई इस देश की उसको सरवाइव नहीं कर सकता था. यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं था कि उनके जाने का या निकाले जाने का. और अगर आप देखें उनका 63 में ही कंटिन्यूड टू बी दी स्टिल रिस्पेक्टेड लीडर. एंड हाँ, स्टेचर वो नहीं था, इंटरनेशनल स्टेचर ख़राब हो गया था. तो ही वॉज नॉट द सेम मैन एंड ही डिडंट सर्वाइव द वॉर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट.
इस हार ने नेहरू का राजनीतिक कद तो कम किया ही, भारत के मनोबल को भी उसने गहरी चोट पहुंचाई. 27 जून 1963 को लता मंगेशकर ने जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में प्रदीप का लिखा वो मशहूर गाना गाया जो चीन से भारत की हार के बाद भारतवासियों की मनोदशा को चित्रित करता था. नेहरू की आंखों में आंसू ला दिए. लेकिन आंसुओं भर से तो रणनीतिक नाकामी, अपर्याप्त सैनिक तैयारी और वास्तविकता से दूर रहने की कमी को तो छिपाया नहीं जा सकता. रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली.
श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इंदर मल्होत्रा और जनरल के तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है. बीबीसी ने भारत चीन युद्ध को लेकर इन दोनों से कुछ वक्त पहले बात की थी. विवेचना पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें. आपसे विदा लें उसके पहले मुख्य समाचार एक बार फिर मोहम्मद शाहिद से.
बीबीसी समाचार. अभी अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शिया मस्जिद इमाम जमा में आत्मघाती बम विस्फोट हुआ है जिसमें 30 लोगों के मारे जाने की आशंका है. एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार 2015 में दुनिया भर में हुई 90 लाख समय पूर्व मौतों का संबंध प्रदूषण से था. पुलिस ने बताया है कि गुरुवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर शहर में एक अज्ञात हमलावर ने ग्रेनेड फेंका जिसमें 26 मजदूर घायल हो गए. बीबीसी समाचार.
दिन भर में आज इतना ही. कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया अनंत प्रकाश ने. आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी. तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।